कुञ्जबिहारे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोलिए हरि प्राण को करताल बजाओ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ यशोदानन्दन जय व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन जय यशोदानन्दन जय ब्रज जनरञ्जन। री बोल सब बोलिए। यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ कोई करताल बजा सकता है क्या कृपया कोई करताल बजा सकते हैं यहाँ बजा गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ जय यशोदनंदन जय व्रज जनरंजन रिवो यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 रिवो हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राधे श्याम हरि बोल हरि बोल जयो जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की धन्यवाद गुड़ा के स्वरूप प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु हैं पर हमारे लिए करताल बजाए बड़ी बात है ये सर्व शास्त्रावधि पीयूष सर्व वेदैक तत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्व लोकेक दृक्पद सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीजुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितं च। नमों विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्री वृंदावन धाम की। श्री वृंदावन धाम में हम सब एकत्रित हुए हैं। प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवतम के श्लोक के चर्चा आस्वादन करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 7। शीर्षक है शिवजी विषपान करके ब्रह्मांड को बचाते हैं, श्लोक 43। तो ये अध्याय का आज समापन होगा। जिस श्लोक में तात्पर्य है उसको हम आवृत्ति करेंगे, बाकी पढ़ेंगे। तो 44 श्लोक में तात्पर्य तो उसको आवृत्ति करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं सब। तस्यापि 43 है ये 43। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्य जलकल्मषः यच्चकार गले नीलम तच्च साधो भूषणम। अपयश के कारण खीर सागर से उत्पन्न विष ने मानो अपनी शक्ति का परिचय शिवजी के गले में नीली रेखा बनकर दिया हो, किंतु अब वही रेखा श्री भगवान का आभूषण मानी जाती है। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? नीलकंठ। भगवान शिव को नीलकंठ कहते हैं। वैसे इसके टीका में क्रम संदर्भ में श्री लजीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि शिवजी ईश्वर हैं, तो महान ईश्वर हैं वो, तो उन्होंने जो विष को पान किया पूरे संसार को रक्षा करने के लिए, कि उन्होंने विष को अपने में या कंठ में धारण किया, अर्थात ये शिवजी की इतनी महान है, शिवजी इतने महान है कि शिवजी की महानता है कि ऐसे विष को भी उन्होंने अपने कंठ में धारण किया। ये नहीं कि विष जो है अपना प्रभाव दिखाया और शिवजी के ऊपर कुछ प्रभाव दिखाया, पर इसको इस तरह से वो समझाते हैं कि जब उन्होंने उस विष को धारण किया तो उसका प्रमाण क्या है धारण किया करके, कैसे जानेंगे कि धारण किए शिव जी ने उस विष को? यही है कि उनका कंठ नील वर्ण हो गया, तो इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। अब ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कोई भी प्रसंग जो हम पढ़ते, जैसे अभी समुद्र मंथन लीला चल रही है, आप सब जानते हैं कई दिनों से जो सुनते आ रहे हैं, हर एक प्रसंग में एक बहुत ही सैद्धांतिक श्लोक होती है। तो ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण और सैद्धांतिक श्लोक है, जिसको प्रभुपाद ने व्याख्या दिए हैं और उसको चर्चा करेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भी है, इसको आवृत्ति करेंगे ताकि याद भी हो जाए। तप्यन्ते लोक तापेन साधव प्रायसो जनः परम आराधनम तद्वी पुरुषस्याखिलात्मनः तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायसो जनः परम आराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायसो जनः परम आराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। तप्यन्ते लोकतापेन साधव तप्यन्ते लोकतापेन माता जी तप्यन्ते स्वेच्छा से कष्ट उठाते हैं, लोकतापेन सामान्य लोगों के कष्ट के कारण, साधवः साधु पुरुष, प्रायशः प्राय सदैव, जनाः ऐसे पुरुष, परम आराधनम पूजा की सर्वोच्च विधि, तत् व कार्य ही निसंदेह पुरुषस्य परम पुरुष का अखिलात्मनः जो सबके परमात्मा है। अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूजने की यही सर्वोच्च विधि मानी जाती है। तात्पर्य, जो लोग दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने में लगे रहते हैं वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किसी प्रकार तुरंत मान्य होते हैं। किस प्रकार तुरंत मान्य होते हैं इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। श्रीमद् भगवद गीता 18:68-69 में भगवान कहते हैं, यइदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः। जो व्यक्ति मेरे भक्तों को श्रीमद् भगवद गीता के संदेश का उपदेश देते हैं वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। पूजा द्वारा मुझे तुष्ट करने में उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के कल्याण कार्य हैं, किंतु सर्वोपरि कल्याण कार्य है कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना। अन्य कल्याण कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति प्रकृति के नियम तथा कर्म फल रोके नहीं जा सकते। भाग्य या कर्म के नियमों के कारण मनुष्य सुख या दुख पाता है। उदाहरण, यदि किसी को न्यायालय का आदेश मिलता है तो उसे इसे स्वीकार करना पड़ता है, चाहे इससे लाभ हो या हानि। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कर्म तथा उसके फल के अधीन है, कोई इसे बदल नहीं सकता। इसलिए शास्त्र का वचन है, तस्यैव हेतुः प्रयतेत कोविद न लभ्यते यद् भ्रमतात्मुपर्यतः। श्रीमद्भागवतम्। मनुष्य को उसके लिए प्रयास करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए जो कर्म फल के कारण ब्रह्मांड में ऊपर नीचे चक्कर लगाने से कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता। वो क्या है? मनुष्य को कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि मनुष्य कृष्ण भावना मुद को सारे विश्व में प्रसारित करने का प्रयत्न करता है तो उसे श्रेष्ठतम कल्याण कार्य करने वाला समझना चाहिए। श्री भगवान स्वतः उसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यदि श्री भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके लिए प्राप्त करने को बचता ही क्या है? यदि श्री भगवान ने किसी को मान्यता दे दी है तो वह उनसे भले ही कुछ न मांगे, किंतु प्रत्येक हृदय में वास करने वाले श्री भगवान उनकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पुनः जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायशो जनः। सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य यही होगा कि लोगों को कृष्ण भावना मुद के स्तर तक ऊपर उठाया जाए, क्योंकि बद्ध जीव कृष्ण भावना मुद के अभाव के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं। स्वयं श्री भगवान भी मानवता के कष्ट को मिटाने के लिए अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरत वंशी, जब जब और जहां जहां धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होता है उस समय में अवतरित होता हूँ। पुण्यात्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के अतिरिक्त धर्म की पुनस्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 4:7-8 श्लोक। अतएव सारे शास्त्रों का यही अभिमत है, कृष्ण भावनामुक्त आंदोलन का प्रसार करना ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। इसके फलस्वरूप सामान्य लोगों को जो परम लाभ मिलता है उसके कारण से भगवान का भक्त द्वारा की गई सेवा को तुरंत मान्यता प्रदान करते हैं। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, निशम्य कर्म तत्सोभो देव देवस्य मीडुस प्रजा दक्षिणी ब्रह्मा वैकुंठस्य ससंसिरे। भगवान शिव ने जो विषपान किया, इस कार्य को सुनकर भवानी अर्थात उनकी अर्धांगिनी दक्ष कन्या, ब्रह्मा जी, यहाँ तक कि भगवान श्री हरि विष्णु समेत सामान्य लोगों ने देवताओं द्वारा पूजित और लोगों को वरदान देने वाले श्री शंकर जी को के इस कार्य के भूरी भूरी प्रशंसा की। पस्कन्नं पीबतः पूर्णं यत किंचित् जग्रुः स्मतत् वृश्चिका ही विशो सद्धो दंद सुकाश्च ये परे। जब शिव जी विषपान कर रहे थे उस समय उनके हाथ से जो थोड़ा थोड़ा विष गिरकर छितर गया उससे बिच्छू सांप विषैले औषधियां तथा अन्य पशु जिनका दंश विषैला होता है वो पी गए। मच्छर सियार कुत्ते तथा अन्य काटने वाले पशु या विभिन्न प्रकार के दंद सुख जिनका दंश विषैला होता है समुद्र मंथन से प्राप्त विष को पी गए, क्योंकि उतना शिवजी की हथेली से नीचे गिर गया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत शिवजी विषपान करके ब्रह्मांड को बचाते हैं नामक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो गया। श्रील प्रभुपाद की। तो इस प्रसंग में और ये जो श्लोक है 44 श्लोक, उसमें कहते हैं कि साधवो प्रायशो जनः, प्राय जित जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं, सदाचारी, भक्त, इनका क्या स्वभाव होता है, कैसे होते हैं ये? कहते हैं साधवो प्रायसो जना, ऐसे पुरुष क्या होते हैं, तप्यन्ते लोकतापेन, वो अन्यों के दुख या कष्ट को देखकर दुखी होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं। कोई दुखी है, बेचारा बहुत दुखी है, उसको कष्ट है, बहुत त्राही त्राही मच रहा है और बहुत कष्ट पीड़ित है, तो औरों के और अन्यों को जब दुख होता है, किसी प्रकार का दुख हो, चाहे वो आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक, साधु व्यक्ति वो होते हैं कि अन्यों के दुख से खुद दुखी होते हैं। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। और दुखी होके वो प्रयास करते हैं कि कैसे उस व्यक्ति का या उस समाज का, उस परिवार का भलाई हो, और उनकी सहायता करने के लिए प्रयत्न करते हैं। और ये भावना, ये जो ये केवल इतना ही, ये जो चिंतन है, ये जो मनोभाव है कि तप्यन्ते लोकतापेन, यही परम आराधनम तद्धि, यही सबसे बड़ी आराधना है कि अन्यों के दुख से दुखी होना और प्रयत्न प्रयास करें कि उनके दुख को किसी तरह से दूर किया जाए, यही सबसे बड़ी आराधना है। कहते हैं किसकी आराधना है, पुरुषस्य अखिलात्मनः, परम पुरुष भगवान की, जो सर्वत्र विद्यमान है, जो सबके परमात्मा है। भगवान को रिझाना चाहते हैं ना, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो यही सबसे पहला गुण है कि जब कोई और दुखी होता है तो उसको देख के हृदय द्रवित हो जाए और ऐसा मन में भाव आए कि उनको किसी तरह से हम मदद करें, सहायता करें। और प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, जो आपने सुना कि जो सबसे बड़ी दया है, आज का प्रसंग जो है, आज का विषय जो हम चर्चा कर रहे हैं, दया, कंपैशन, करुणा, को सबसे बड़ी दया है इस किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए, कि उनको कृष्ण भावना भावित करें, उनको भक्त बना दें, तो उनका जीवन सुधर जाएगा, वो आत्यंतिक सुख प्राप्त करेंगे। बाकी जो थोड़ा बहुत सेवा होती है वो तो मलम पट्टी के समान है, पर किसी को हम प्रचार किए और उनको भक्त बना दिए और कृष्ण भावना भावित हो गए, जीवन भर के लिए वो हमेशा याद रखेगा, आज वो प्रभु जी के वजह से आज मैं इस स्थिति में हूं, आज वो माता जी के वजह से मेरी ऐसी स्थिति है। पहली बार उन्होंने बस एक बार हमें बताए थे, माला दिए थे या कुछ शिक्षा दिए थे, हम में से प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है कि हम कैसे इस आंदोलन में आए, हम कैसे भक्ति मार्ग में आए, कोई ना कोई तो एक माध्यम होता है। और आज हम कैसे स्थिति में है कि आज हमारा जीवन कितना सुधर गया है, कितने सदाचारी, कितने सच्चरित्र, और ये सब किसी ना किसी भक्त के माध्यम से ही हुआ है। तो इसलिए यहां कहते हैं कि, और कुछ इस प्रकार का ही श्लोक, बिल्कुल इसी तरह का ही श्लोक चौथे स्कंध में है, प्रचेताओं के प्रसंग में, वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्राय सब जानते ही हैं। कहते हैं कि बस ये तीन चीज करते हैं, तीन कार्य करते हैं तो भगवान को अति शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। हमारा प्रयास क्या है, बस श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाए, है ना, दयाया सर्वभूतेषु, एक संतुष्ट येन केन वा, दो सर्वेंद्रिय उपशांतश्च, तीन तुष्यन्ति आसु जनार्दन। बहुत सरल श्लोक है, तुष्यन्ति आसु, अति शीघ्र जनार्दन भगवान को कोई प्रसन्न कर सकता है, बड़ी बड़ी दान, बड़ी बड़ी यज्ञ, बड़ी बड़ी त्याग, ये इसकी बात नहीं कह रहे हैं। तीन, बस तीन कार्य करना है, दया या सर्वभूतेषु, प्रत्येक जीव के प्रति एक सहज दया का भाव हो, कैसे उनकी हम उपकार करें, किसी को हमारे हमसे किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का दुख ना पहुंचे। दया या सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु इस शब्द की व्याख्या करके प्रभुपाद कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जितने प्राणी हैं सब भूत है, सारे प्राणी हैं। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्यों को ही दया करना चाहिए और बाकी पशुओं को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं यहाँ कि सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है, क्योंकि वह न केवल मनुष्यों के लिए अपने 84 लाख योनि प्रकट होने वाले समस्त जीवों के लिए आया है। भक्त के न केवल मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता है अभी तो समस्त जीवों को भी। और कैसे कर सकता है, ये प्रभुपाद कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे पशु तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करके हरे कृष्णा मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। तो संसार भर में कृष्ण भावना मुक्त आंदोलन को फैलाने के लिए भक्तों को सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए। तो ये है सबसे बड़ी दया। तो कौन कौन से तीन कार्य करना है, सबसे पहला है दया या सर्वभूत है, जो प्रत्येक जीव के प्रति एक दया भाव हो, एक उपकार करने की भावना हो। फिर कहते हैं कि संतुष्ट ये न के न, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सब प्राय सुने भी होंगे, संतोष त्रिसु कर्तव्य सुदारे भोजने धनी, त्रिसु नैव कर्तव्य स्वाध्याय जप दानी। इति शास्त्र कहता है सब हम में से प्रत्येक व्यक्ति को तीन में संतोष रहना चाहिए और तीन में कभी भी संतोष नहीं होना चाहिए। सौदारे अपने पति या पत्नी, लाइफ पार्टनर, जो भी मिला, जैसे भी मिली, छोटी मोटी घोड़ी, जैसा भी, जिस रंग का हो, जिस वर्ण का हो, जिस साइज का हो, जैसा भी हो, भाग्य में जो लिखा है ये तो विधाता का ही आयोजन है ना, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। और दूसरे की ओर नहीं देखना चाहिए, नहीं हमारी तो अच्छी नहीं है, वो अच्छी है, बिल्कुल इसमें संतोष होना चाहिए कि सुधारे। फिर दूसरा कहते हैं भोजन ही, भोजन, भोजन में आज हमारे भाग्य में क्या है इसका रिजल्ट मिलेगा 9 बजे, तो उसे संतुष्ट रहना चाहिए। प्राय ऐसा होता है कि जो नहीं है उसकी याद आती, थोड़ा अचार होता तो अच्छा होता, अरे जो है वो उसको कौन, जो है उसको आस्वादन करें। प्राय हम जो नहीं है उसकी याद करते हैं, भोजन ही और धनी, धन में संतुष्ट होना चाहिए कि जितना जितना धन कमाए उतना कम है, राइट, जितना धन कमाए वो कम ही होता है। अब बड़े से बड़े रईस व्यक्ति, अंबानी क्या क्या है जो, उनसे पूछ लीजिए आर यू सेटिस्फाइड, क्या आप संतुष्ट हैं, क्या आपको क्या चाहिए, MORE, मोर, ये दिल मांगे और कहते हैं कि और चाहिए, मोर चाहिए, और चाहिए। तो धन की कभी, तो जितना है जैसा भी, जिस तरीके से हम ईमानदारी से धन कमाते हैं उससे व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए, नहीं तो कितना भी कमाए असंतुष्ट ही रहेंगे। धनी, और तीन कार्य में कभी भी संतोष नहीं रहे, कितना भी करे कम है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ है कि अध्ययन करना। हमारे यहाँ भक्त लोग मंदिर में भक्ति शास्त्री पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में ये व्यवस्था बनाई कि सारे भक्तों को शास्त्रों को अध्ययन करना चाहिए, इसलिए कोर्स की व्यवस्था की है, जिसको कहते हैं भक्ति शास्त्री, कम से कम इतना तो सब पढ़े। तो किसी का कुछ स्वाध्याय हो गया, कुछ लोगों के मन में ये भाव क्या है, ये सब बस हरी हरी करो, नाम जपो, ये सब पढ़ाई लिखाई, ये सब क्या जरूरत है, ना ना ऐसा नहीं है। स्वाध्याय बिल्कुल हमेशा, रोज हमारा शास्त्र के साथ टच होना चाहिए, रोज कम से कम आधा एक घंटा तो भागवत खोले, गीता खोले, शास्त्र को स्पर्श होना चाहिए। स्वाध्याय कितना भी हो कम ही है, कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि अब तो हो गया भक्ति शास्त्री, हो गया भक्ति वैभव, पता नहीं कब होगा भक्ति वैभव, तो वो हम नहीं करना है बस बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शास्त्र जितना भी पढ़े, हमारे पूज्य महाराज जी इतने आयु हो गया है अभी भी भागवत को लेके बैठते हैं, अभी भी श्लोकों को आवृत्ति करते हैं। आप सुन के आश्चर्य होंगे, पूज्य जयपतका महाराज भक्ति वैभव किया उन्होंने इस आयु में, और सर्टिफिकेट भी उनको प्राप्त हुआ, सबको फोटो प्रसारित हुआ है। तो अब दिखा रहे हैं ऐसे संत महात्मा लोग, स्वाध्याय हमेशा करना चाहिए और जप में कभी संतोष नहीं होना चाहिए, बस बहुत हो गया अब तो आज का कोटा खत्म। कभी कभी ऐसा होता है ना, पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि भक्त लोग ऐसे जप करते हैं, ऐसे जप करके भीड़ बैग को कहां पार्किंग करते हैं, दूसरे दिन ढूंढना पड़ता है कहां गया बिडवेक को, ऐसा पार्किंग करते हैं कि दूसरे दिन ढूंढना पड़ता है। इतना भी होश गंवाना नहीं चाहिए कि बिडवेक ही नहीं मिल रहा। तो जप जितना भी करे, वृंदावन धाम में तो मैं देखता हूं भक्त लोग तो खूब जप करते हैं, अत्यधिक अधिक अधिक, इसका बहुत लाभ होता है। जप में कभी संतोष नहीं होना चाहिए। और दानी, दान में विशेष करके गृहस्थों को दान देने में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, उसमें संतोष ने बस बहुत हो गया, जन्माष्टमी को दे देना, ये फिर से गीता जयंती में आ गए लोग, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कभी भी कोई आया है तो कुछ भी हो, हमसे जितना भी हो सके उनको देना चाहिए। तो ये है संतोष। तो श्लोक में क्या कहते हैं, दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट ये न कहने वा सर्वेंद्र उपशांतस। और जिसका ये कितना सुंदर कनेक्शन है, देखिए संबंध देखिए, जिसका इंद्रिय शांत है, वश में है, वही संतोष हो सकता है, और जो संतोषी है वही दया कर सकता है। देख रहे ना कनेक्शन, इस श्लोक में जो तीन वाक्य बताएंगे इसका एक से एक दूसरे से संबंध है। जो जिसका इंद्रिय शांत है, उत्तेजित नहीं है, उद्विग्न नहीं है, वही व्यक्ति संतोषी हो सकता है किसी भी परिस्थिति में, और जो संतोषी है वो दूसरे के को प्रचार कर सकता है, दूसरे को दया दिखा सकता है। दया में तो कहना है क्या, अनेक तमाम उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अगर वो आज ये दया नहीं दिखाते, 1965 में नहीं जाते, एक साल के अंदर कितना कठिन परिश्रम हुआ उनको, कितना चुनौती हुआ। 1966 में इस्कॉन की स्थापना हुई, कहां वृंदावन राधा दामोदर मंदिर, और कहां न्यूयॉर्क लॉस एंजल्स विदेश की धरती में जाके, दया ही वो इम्पिटस था कि प्रभुपाद जी ने सारे संसार में कृष्ण भावना मत को प्रचार किए। इसलिए उनके गुणबान में उनके परम शिष्य पूज्य जयपतका स्वामी महाराज कहते हैं, गीता भागवत चैतन्य चरित प्रेमामृत रस सार, कतना सुंदर सरल करिया के बुझाई तेयार, यदि प्रभुपाद न होइत तबे की होइत ए जीवन बहित किसे। कितना सुंदर पद है ये, गीता भागवत चैतन्य चरितामृत क्या पहले नहीं था? प्रभुपाद से पहले सब था, भगवत गीता भी था, भागवत भी था, लेकिन क्या कहते हैं, कतना सुंदर और सरल करिया, इतना सुंदर सरल भावार्थ को देके, तात्पर्य को देके, इतना सुंदर भाव से सरल करके सबको दे दिया कि आज भक्ति वेदांत तात्पर्य पढ़ के आज हम अपने भक्ति कर पा रहे हैं। सारा संसार को उन्होंने परिवर्तन कर दिया, भले दुनिया ऐसे के तैसे हो जाए, इधर के उधर हो जाए, जब तक बीबीटी है, प्रभुपाद जी के साहित्य है, और कभी भी कोई अंधकार में कोई माया में नहीं जा सकता अगर कोई इसको अच्छी तरह से पढ़ ले। तो ये दया ही था जो प्रभुपाद जी ने पूरे संसार को प्रचार किए। एक 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 व्यक्ति गौतम बुद्ध भगवान के पास आए, भगवान बुद्ध, और उन्होंने कहा कि तब उनके शिष्यों ने, भगवान बुद्ध के शिष्यों ने उनको खूब प्रचार किया। नया व्यक्ति था, जैसे अपने मंदिर में नया व्यक्ति कोई आता है ना, तो भगवान बुद्ध के शिष्यों ने खूब प्रचार किया, लेकिन उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो भगवान बुद्ध बाद में आए तो उन्होंने देखा कि ये लोग उसके पीछे ही पड़े हैं, प्रचार करने में लगे हैं, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान बुद्ध ने कहा रुको रुको रुको, उस व्यक्ति को पूछे कहां से आए, तो उसने बताया फलाने गांव से यहां से। कुछ खाए पिए, भोजन किया? तो उसने कहा नहीं किया। तो भगवान ने कहा कि इनको पहले प्रसाद दो, पहले प्रसाद दो उसके बाद फिलोसफी दो। तो जब उन्होंने उनको भोजन करवाया उनके शिष्यों ने, उसके बाद जो उन्होंने सिद्धांत या शिक्षा दिए अब बिल्कुल फिट हो गया, पहले जा ही नहीं रहा था अंदर। तो दया करने की भी एक, और एक बार ऐसे हुआ भगवान बुद्ध के जीवन में, एक व्यक्ति आया और कि हे भगवान मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो वो ज्वाइन हो गया निवक्त आश्रम और वहां बहुत अच्छा प्रशिक्षण हुआ, सब सेवा शास्त्र स्वाध्याय जप मंगल आरती सब सब कुछ कर लिया। अब कुछ साल के बाद उसने भगवान बुद्ध से कहा कि हे भगवान गुरुदेव, अब मैं प्रचार करना चाहता हूं कि मैंने जो भी सिखा है दूसरे को। तो भगवान बुद्ध ने कहा अरे तुम तो अभी अभी कुछ साल हुआ, अभी भी कुछ दिन हुआ, कुछ साल ही हुआ आप आए और तुम प्रचार करना चाहते हो, कहां प्रचार करोगे? तो उस शिष्य ने कहा कि महाराज वो एक गांव का नाम लिया, उस गांव वहां प्रचार करना है। तो भगवान बुद्ध अरे वहां प्रचार करोगे, अरे बाप रे बड़ा खतरनाक गांव है, वहां कभी सोचना भी मत, वहां आप जाओगे तो सबसे बड़ा हानि होगा आपका। तो इस शिष्य ने कहा मैंने तो मन बना लिया है कि वहां जाएं और आपका आशीर्वाद चाहिए प्रचार करने के लिए। अरे तुम्हें पता नहीं है वहां तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, सब पत्थर फेंकेंगे, कोई नहीं सुनेगा। तो इसने कहा कि चलो कोई नहीं सुने तो कम से कम एक आध तो मिलेंगे, एक तो कोई मिलेगा जिसको हम बता सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा ना ना ना, सुनने की तो बात छोड़िए, तुम्हें गाली गलौज देंगे और फटकारेंगे, चल ढोंगी कहेंगे आ गए भगुए, ऐसे कहेंगे, बहुत बहुत धिक्कार करेंगे, बहुत गाली देंगे। तो शिष्य ने कहा कि बस गाली ही तो देंगे ना, मार तो नहीं देंगे ना। तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं नहीं, तुम नहीं जानते वो इतने क्रूर व्यक्ति हैं वहां, उस गांव के लोग इतने क्रूर हैं कि तुम्हें थप्पड़ भी मारेंगे, जरूरत पड़े तो पत्थर मारेंगे। तो शिष्य ने कहा कि अच्छा बस थप्पड़ ही मारेंगे ना, पत्थर मारेंगे, जान तो नहीं ले लेंगे ना। तो भगवान बुद्ध एक कैसा व्यक्ति है मैं इसको बता रहा हूं, समझ नहीं रहा है, तुम्हारी जान भी ले सकते हैं वो, तुम्हें हत्या भी कर सकते हैं, इतने क्रूर व्यक्ति हैं। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आपके आदेश और आशीर्वाद से मैं प्रचार करने जा रहा हूं, ये शरीर तो नश्वर है, एक ना एक दिन तो जाएगा ना, अगर मेरे भाग्य में लिखा है कि उस गांव में जाके प्रचार करके मैं मेरी कुछ शरीर हानि हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं शहीद हो जाऊंगा, वो तब ठीक है आपके आशीर्वाद से वो भी सही। बाप रे इतनी बार भगवान बुद्ध ने उसकी परीक्षा ली, फिर भी उसने अपने ही उत्तर से उनको प्रसन्न कर दिया, भगवान बुद्ध ने गले लगा लिया और कहे कि बेटा तुम प्रचार करने लायक हो। वास्तव में कितना कष्ट आने पर भी, प्रचार इतना सहज नहीं है, इतना कष्ट इतना तकलीफ आने पर भी कोई अगर मन में दृढ़ता है कि नहीं किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में हम कृष्ण भावना मुद का, यही वास्तविक दया भाव है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि वास्तव में प्रचारक को ऐसे होने चाहिए, वो तो परीक्षा ले रहे थे उसकी। तो कहने का अर्थ है कि बस इतना हमें ध्यान रखना है भक्तों कि प्रत्येक कार्य में कुछ सावधानी बरतनी होती है, ठीक है। यहां दया की बात हो रही है कि प्रत्येक जीव के प्रति दया करना, और प्रभुपाद जी तो लिखते हैं कि प्रचार ही सबसे बड़ा दया है, कृष्ण भावना मुझको देना, और किसी को कुछ जरूरत है तो आपने दे दिया, किसी को कुछ आवश्यक है, कोई साधु महात्मा है, कोई गरीब है उसको कुछ दे दिया, वो भी है, बस सबसे बेस्ट है कृष्ण भावना मुझ का प्रचार करना, दया वो सबसे बड़ी दया है। पर दया देखिए अभी ध्यान से थोड़ी, अभी बहुत महत्वपूर्ण वाक्य चर्चा होने जा रही है, दया कब करे, किसको करे, कितना करे, ये बहुत आवश्यक है जानना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दया करते हुए गए तो कल्याण अपना ही हो गया। हम दया करने गए मतलब प्रचार करने गए और खुद ही प्रचारित हो गए तो रिस्क है ना, है ना, आप समझ गए सब बुद्धिमान है। तो कहने का अर्थ है कि भरत महाराज का उदाहरण देखिए, शास्त्रों से लेते हैं। भरत महाराज भाव के स्तर पे पहुंच गए थे और एक छोटा सा हिरण के बच्चा है, एक छोटा सा हिरण का बच्चा, उसके प्रति मन लग गया, आसक्त हो गए, तो कितना बड़ा नुकसान हुआ कि दो जन्म लेना पड़ा, है ना, वो भी तो दया ही था ना, दया ही था। तो पूज्य महाराज जी कहते हैं कि भरत महाराज जैसा उन्नत भक्त दया करने गए, एक हिरण के बच्चे से उनका मन लग गया, आसक्त हो गए, तो इतना दो दो जन्म लेना पड़ा। और हम लोग जो इस कलयुग में है 2023 में है, जो कितने इधर हिरण दिखेंगे, हिरणी नहीं नहीं दिखेंगे, जिसमें अगर कहीं कहीं कुछ मन लग गया तो हमारा क्या होगा, कल हमारा तो कल्याण हो जाएगा प्रचारकों का। तो दया करे, पर कब करे, कितना करे, कैसे करे, इसको जानना चाहिए। इसके लिए परम पूज्य राधना स्वामी महाराज का एक कोट मुझे हमेशा याद आता है, मैं इसको पहले इंग्लिश में बोलता हूं फिर हिंदी में अनुवाद करते हैं। महाराज कहते हैं, कंपैशन विदाउट डिटैचमेंट इज अटैचमेंट टू बॉडीली प्लेटफॉर्म। भक्तों एक वाक्य है, इतना डीप है, इतना गहरा है, इसको अगर समझ लिए ना तो दया का करुणा का वास्तविक अर्थ हम समझ जाएंगे। क्या कहते हैं महाराज जी, कंपैशन विदाउट डिटैचमेंट अर्थात दया करना, करुणा करना आसक्ति के बिना या अनासक्त होकर करना चाहिए। अगर अनासक्त हुए बिना दया करुणा दिखाते हैं वो क्या है, शारीरिक स्तर पर आसक्ति ही है। नहीं समझे, फिर से बताता हूं। हम दया करना चाहते हैं, करुणा करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, पर अनासक्त भाव से होना चाहिए। अगर हम दया करुणा करते हुए आसक्त हो गए, ठीक है, तो फिर वही शारीरिक स्तर पर एक आसक्ति का कारण है और हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा है दया करना, बहुत अच्छा है प्रचार करना, बहुत अच्छा है दूसरे को कृष्ण भावना मुद्देना, पर अनासक्त भाव से ये सबसे बेस्ट है। इसलिए विचार करना चाहिए, एक बुद्धि जो हमें भगवान ने दी है ना, विवेक, विचार करना चाहिए। इस संबंध में भी एक बहुत सुंदर घटना है। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि एक एक गांव में बाढ़ आ रहा था, नदी में बहुत उफान आया और बाढ़ आया, तो बहुत पानी बहुत तेजी से बह रहा था। बहुत सुंदर घटना है सुनिए। तो एक टापू के ऊपर कुछ लोग खड़े थे, देख रहे थे, अरे नदी में इतना प्रवाह है। तो एक गुरु जी थे और एक शिष्य भी थे। तो वो शिष्य था, गुरु जी को देखे, गुरु जी ये देखिए वो नदी में कुछ दिख रहा है मुझे, कोई बहते हुए जा रहा है, कुछ बहते हुए जा रहा है, हो सकता है कोई महिला है, कोई स्त्री है जो पानी में डूब गई है, उसका केस दिख रहा है और उसको बचाना चाहिए। अरे गुरु जी ने कहा, हाँ बिल्कुल बचाना चाहिए, जाओ जाओ वो बेचारी डूब जाएगी। तो ये शिष्य गया पानी में, थोड़ा उसको तैरना आता था, पानी में गया, अंदर गया और उसको पकड़ लिया, उसको सोचा कि इसको पकड़ के और मैं तैरते हुए किनारे पे आ जाऊं। अब एक तैरते हुए किनारे पे आने के बजे वो भी खुद बहने लगा उसमें। तो गुरुजी पुकारने लगा, अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम तो किसी को बचाने गए थे, कोई महिला डूब रही थी, कोई उसका केस दिख रहा था काला काला, तुम उसको पकड़ के लेके आने वाले थे, क्या हुआ, तुम क्यों बह रहे हो। वो कह रहे, गुरुजी ये कोई महिला नहीं, ये भालू है, ये इसने नहीं मुझे, मैंने नहीं पकड़ा, इसने मुझे पकड़ा, मैं पकड़ लेता तो अलग बात थी, ये मैंने नहीं पकड़ा है, इसने मुझे पकड़ी है। तो संसार में कई बार बहते हुए हम किसके उद्धार करने जाए और हम उसको उद्धार करने के बदले वो हमें पकड़ ले, अगर तो हमारा, हम भी बह जाएंगे, हम उद्धार नहीं हो पाएंगे। तो बुद्धि विवेक जो है, विचार करना चाहिए, विचार से कुछ कार्य सिद्ध होती है। अंत में एक बहुत सुंदर घटना आपको बताता हूं, इससे हम समझ सकते हैं कोई भी कार्य करे हमें दया ही करना है ना, प्रचार करना है, कोई भी निर्णय लेना है ना, एक बार बस मन के वेग को, उपदेशामृत में कहते हैं ना, मन के वेग को थोड़ा संयम कर ले, विचार कर ले, कुछ वरिष्ठों से एक बार पूछ ले, तब निर्णय ले। इस विषय पर एक घटना है, आज से हजारों वर्ष पहले इस भारतवर्ष में एक बहुत बड़े सुंदर धार्मिक विद्वान राजा हुए हैं, महाराजाधिराज श्री भोज। भोज हम लोग तो अपने संस्कृत के पाठ्यक्रम में स्कूल में पढ़े थे, भोज राजस्य विक्रमासिंह सन प्राप्ति हम लोग पाठ्यक्रम में पढ़े थे। देखिए वो भोज राजा जो थे विद्वान थे और भक्त भी थे, वो केवल राजा नहीं थे, संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान थे। तो एक बार क्या हुआ, उनको एक श्लोक मिला, बहुत प्यारा श्लोक है, तो उनको श्लोक इतना अच्छा लगा कि उस श्लोक को उन्होंने दीवारों पे लिख दिया चारों ओर, जहां तहां, अरे ये श्लोक तो बढ़िया है, लिखने लायक श्लोक है, वो चारों ओर दीवारों पे से लिख दिए। वो श्लोक क्या था सुनिए, कहते हैं सहसा विदधीत न क्रिया, सहसा विदधीत न क्रिया, कभी भी मन में कुछ भी विचार आता है तो तुरंत मत कर दो, तुरंत उसको कार्य मत करो। क्यों? कहते हैं अभिवेक परमा पदांग पदम, अगर हम विचार करके विचार ना करके अपने हमने कुछ कार्य किया तो वो होगा अविवेक, वो होगा फुलिशनेस, और अविवेक से किया हुआ कार्य हमेशा घातक होता है। फिर कहते हैं वृणुते ही विमृश्य कारिणम, विमृश्य कारिणम का अर्थ है बहुत सोच विचार करके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये कार्य करूं या ना करूं, इनसे बात करना चाहिए कि नहीं, किस तरह से करें, और कुछ विद्वानों से कुछ अनुभवी भक्तों से पूछ लेना, पूछ के कुछ विचार करके कार्य करे तो अच्छा है। अंत में कहते हैं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा, कितना प्यारा श्लोक है, अगर कोई व्यक्ति इस तरह से विचार करके अन्यों से जिज्ञासा करके फिर निर्णय लेता है, ऐसे व्यक्ति को सौभाग्य की देवी लक्ष्मी प्राप्त हो जाते हैं। गुणलब्धा स्वयमेव संपदा, ऐसे व्यक्ति को सौभाग्य की देवी लक्ष्मी प्राप्त होते हैं और सारे देवताओं अपने सद्गुणों में आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं उसमें। तो राजा ने सुन लिया वो श्लोक, चारों ओर लिख लिया अपने बेडरूम में, अपने ड्रेसिंग रूम में सब, अरे बड़ा अच्छा श्लोक है, सहसा विदधीत न क्रिया अविवेक परमा पदांग पदाम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलब्धा स्वयमेव संपदा, और बोलते रहा ऐसे, जैसे हमारे भक्ति शास्त्र के स्टूडेंट श्लोक याद करते हैं, बोलते रहते हैं। और ऐसे एक रात्रि को उसका राज्य कार्य संपन्न हुआ, विश्राम लेने के लिए वो अंतपुर में आया, देखा तो उस समय तो बिजली तो थे नहीं, टिमटिमाती हुई कोई दीपक जल रहा था। उसने अपने अंतपुर में क्या देखा, बड़ा मार्मिक घटना है, सुनो भक्तों, कि उसके बिस्तर में जहां वो सोता है ना, वहां अपनी महारानी लेटी है, महारानी विश्राम कर रही है, और उसके साथ एक बहुत सुंदर नवयुवक, एकदम गोरा, देखने में तो एकदम हैंडसम, कोई हीरो जैसा दिख रहा है, और उसके मूंछ है, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी है जैसे आजकल लोग रखते हैं फैशन, ऐसा सुंदर पगड़ी बांधा है, राजकुमार रानी के साथ कोई नवयुवक लेटा हुए, और रानी चिपक के लेटी है। बस इतना, क्यों, राजा तो एकदम क्रोध हो गया, इतना देखना ही था, इतना क्रोध आ गया राजा को, इतना क्रोध आ गया कि निकाला तलवार, आज इन दोनों को एक साथ खत्म कर दूंगा। ऐसा कैसे, ये मेरी प्रिय पटरानी महारानी किसी अन्य पुरुष के साथ, ये कैसे संभव है कि आज ही दोनों को खत्म कर दूंगा, ऐसे तलवार निकाला। और तलवार निकाल के वो मारने ही जा रहा था कि वो बिस्तर के ऊपर जो दीवार था उसमें श्लोक लिखा था, उसको नजर गया, सहसा विदधीत न क्रियाम, अविवेक परमांग पदांग पदाम बृणते ही विमृश कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा रुक गया। अरे आज ही श्लोक याद किया था कि कभी भी कुछ मन में विचार आए तो तुरंत कार्य करना मत, क्योंकि अविवेक से बहुत बड़ी हानि होती है, पीछे पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। और इसलिए इस सब विचार करके उसने तलवार को म्यान में रखा, फिर जानने के लिए महारानी महारानी ऐसे जोर से उनको चिल्लाया। और रानी और वो नव युवक जो तो घबरा के उठ गए, इतना जोर से उसने चिल्लाया तो सब घबरा गए, एकदम उठ गए। और फिर वो क्रोध से कहने लगा, ये क्या है, आपके बिस्तर में ये कौन पुरुष है, ये तो मैं कभी देखा नहीं, आपका ऐसा चरित्र है। और बस बड़बड़ाने लगा। व्यक्ति को जब क्रोध आता है ना, और कुछ नहीं देखता है, माई बाप कुछ नहीं देखता है, चालू हो जाता है सीधा, है ना। तो ये बहुत बोलने लगे, तो रानी जो है ना वो हंस रही थी एक्चुअली। अब देखो ये क्रोध कर रहे हैं आप, कोई व्यक्ति अगर गुस्सा कर रहा है और आप अगर हंसे तो उसका क्या होगा, पारा और नहीं बढ़ेगा, उसकी पारा तो और बढ़ जाएगी। अरे मैं गुस्सा कर रहा हूं, ये हंस रहा है। रानी जो है बहुत हंस रही थी, तो बहुत जब उनका थोड़ा क्रोध शांत हुआ तो कहे, एक मिनट महाराज, हम आपको कुछ बता रहे हैं, थोड़ा सुनिए तो सही, आप बस क्रोध में लाल पीले हो रहे। आपकी जो पुत्री राजकुमारी, ये विवाह होके अन्य के घर में चली जाएगी, ससुराल चली जाएगी, और वहां तो बहुरानी बनेगी, बहुरानी बनके सबकी सेवा करेगी, सबकी सेवा करेगी, और हमारी घर से तो विदाई हो जाएगी। एक ही कन्या है और हमारे घर से विदाई हो जाएगी। तो आपकी पुत्री राजकुमारी की इच्छा थी कि माँ मेरे कोई भाई नहीं है, तुम लोग हमेशा दुख करते हो ना कि मेरी कोई भाई नहीं है, तो कल सुबह मैं इस घर से विदाई हो जाऊंगी, तो तुम आज तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर लो कि मुझे तुम्हारा बेटा बना लो, मुझे तुम्हारा पुत्र बना लो। तो इस राजकुमारी की इस विनती से महारानी ने उनको अपना बेटा जैसा सजा दिए थे, एकदम बढ़िया से कोट कमीज पगड़ी दाढ़ी वाड़ी लगा दिए, मूंछ लगा दिए और तिलक कर दिए, आज बेटा बन गए। और जब बेटा बन गए तो इतना प्यारा लग रहे थे वो राजकुमारी, इतना प्यारा लग रहे थे, इतना सुंदर लग रहे थे कि महारानी के कि आज की रात तुम मेरे पास हो जाओ। और फिर अपने बेटे को, अपनी बेटी को ही जो बेटे के रूप में था, उनको अपने पास वो सुलाई थी। बताओ महाराज को जब ये बात पता चला, बेचारे इतने लज्जित हो गए, तलवार हाथ से फेंके और धड़ांग से नीचे गिर गए कि आज मुझसे अनर्थ हो जाता, आज मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो जाता कि इतिहास साक्षी होता कि राजाधिराज महाराज भोज अपने ही हाथों अपनी पत्नी और बच्चों को हत्या कर दिया। भक्तों उस श्लोक को देखते हुए उसने पूरा ढिंडोरा पिटा, इस श्लोक किसने लिखा, बुलाओ उसको राज दरबार में। और वो श्लोक लिखे थे महाकवि भारवी, तो नवरत्न में से एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं। बहुत गरीब थे बेचारे, के पास कुछ नहीं था, तो राजा ने आदेश दिया और सब लोग ढूंढने लगे, ये श्लोक किसने लिखा, कौन प्रभु जी लिखे ये श्लोक बताओ। तो सब जब गए तो इनको पता चला, अच्छा ये महाकवि भारवी हैं, और पता भी नहीं चल रहा, एक झोपड़ी में रह रहे हैं। उनको पालकी में बिठा के महाराज भोज ने राज दरबार में बुलाया और लिखा गया है प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, एक एक अक्षर के लिए, सुनिए ध्यान से इस श्लोक के, एक एक अक्षर के लिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दिए, एक एक अक्षर के लिए। इस श्लोक में कितने अक्षर है, जितने अक्षर हैं उतना लाख स्वर्ण मुद्रा दिए कि आज आपके वजह से मैंने बहुत बड़ा एक अनर्थ और पाप से बच गया। इसलिए भक्तों कहने का तात्पर्य यह है, कई बार हम आवेश में आके कुछ बहुत बड़ा निर्णय ले लेते हैं, बाद में इतना पश्चाताप करना पड़ेगा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए दया बहुत बड़ा गुण है, बहुत अच्छा है, प्रचार करना चाहिए। कुछ भी कार्य के लिए अपने विवेक है, अपने से एक बार पूछ ले वरिष्ठों से पूछ ले, तब कुछ निर्णय ले। और यहां इस श्लोक में भगवान शिव दया करके सारे जगत को उद्धार किए हैं। तो यहां इस अध्याय का अंत होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ राशि मद भागवत महापुराण की।